जिंदगी तब बेहतर होती है जब आप खुश होते हैं, लेकिन उस वक्त बेहतरीन हो जाती है जब आपकी वजह से कोई और खुश होता है। ये अली नादिर साहब ने हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट भेजा था, मैंने आप लोगों की खिदमत पेश किया। प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह जिंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद आपको कहता हूँ। तेहरान स्टूडियो से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 6:34 का टाइम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपनी खूबसूरत सी सुबह का आगाज अल्लाह ताला के खूबसूरत और बाबरकत नाम से कर चुके होंगे। 6:34 टाइम जो है ईरान का तब्दील हो चुका है और इंशाल्लाह अब इस टाइम के मुताबिक हम लोग आप लोगों की खिदमत में हमेशा हाजिर होंगे। मेरे साथ रुबा भी मौजूद हैं।
जी अस्सलाम वालेकुम खुर्रम, और अपनी खूबसूरत सी नाज़रीन की खिदमत में एक बहुत भरपूर और पुरजोश सलाम अर्ज करती हूँ। नाज़रीन, बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, उम्मीदवार हैं आप सब खैरियत से होंगे नाज़रीन, और अपनी खूबसूरत सी सुबह का आगाज अपने प्रोग्राम सुबह जिंदगी के साथ कर चुके होंगे।
जी हमारा हफ्ते का मौजू जो चल रहा है वो है, क्या है वो?
जिंदगी में मकसद का।
जी जिंदगी में मकसद है और जिंदगी में क्या मकसद होना चाहिए, यहाँ पर एक चीज में पढ़ रहा था, बड़े मजे की चीज है, और वो ये लिखी हुई है कि जिंदगी का ये मकसद सिर्फ नहीं है कि जिंदा रहना। जिंदा रहना सिर्फ जिंदगी का मकसद नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज को पहचानना या कोई ऐसी चीज को ढूंढना जिसके लिए आप जिंदगी कर सकें। यानी वही मेरे ख्याल में मतलब यही कहने का है कि वो एक मकसद ढूंढना, वो एक सोच ढूंढना जिसकी बुनियाद पे आप लोग जो है आगे चल सकें। तो बहरहाल ये हमारा हफ्ते का मौजू है और इंशाल्लाह इस पे जो है हम आगे भी बात करेंगे। और क्या ख्याल है, चलते हैं, हमारे पास जो है एक तारीखी रिपोर्ट है हिंदुस्तान से आसिफ के साथ, तो वो देखते हैं और उसके बाद दोबारा प्रोग्राम को आगे चलाएंगे। तो चलते हैं हिंदुस्तान। जी हिंदुस्तान नहीं गए हम लोग पहले आप लोगों को दिखा दिया हमने कि क्या कैसे किस तरीकों से आप हमारे साथ रابطہ कर सकते हैं। तो ये तो बहरहाल हमारे फ़ोन नंबर वेबसाइट वगैरह थी और उम्मीद है कि आप लोग हमें आज के प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। फेसबुक मेरी यहाँ पर खुली हुई है और आप हमें जो सवाल आपके जहन में आता है, कोई भी बात आप करना चाहते हैं, कोई तस्वीर आपने शेयर करना चाहते हैं, हमारे पास एक गिलगित से तस्वीर भी हमारे एक दोस्त ने शेयर की है, वो भी इंशाल्लाह हम प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारी मेहमान कौन हैं आज प्रोग्राम में?
पता चलो कि आज इतवार का दिन है और इतवार का दिन हमारे खूबसूरत और प्यारे प्यारे बच्चों का दिन है। आज हमारे साथ अनम ज़हरा साहिबा होंगी, डॉक्टर अनम ज़हरा साहिबा, और हमारा आज का मौजू है बच्चों में डिप्रेशन या कशीदगी की बीमारियां जो होती हैं। बहुत ज़रूरी और बहुत एक अहम मौजू है जो बच्चों में बहुत पेश आता है और वालदैन अक्सर इससे निमट नहीं सकते, तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि कैसे उनसे निपटा जाए।
बिल्कुल, मैं सिर्फ ये तस्वीर अगर ये इस पर जूम कर लिया जाए, अली आगा साहब ने जो है अपनी गिलगित, और मेरे ख्याल से गिलगित ही तस्वीर, क्योंकि पहाड़ शहाड़ जो है ज्यादातर उसे, अली आगा साहब ने ये तस्वीर शेयर की थी और बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने जो है तस्वीर हमारे फेसबुक पेज पर डाली। इंशाल्लाह आप तस्वीरें डालते रहें और हम जो है इसी तरह आपकी तस्वीरें, किसी किस्म की कोई तस्वीर हो, लोगों की तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ जगहों की तस्वीरें, हम इसी तरह शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका कि आपने जो है हमारे पेज पर तस्वीर डाली। बहरहाल तो चलते हैं, अब हम जो है जरूर जाएंगे हिंदुस्तान, वहां पर हमारे पास देवर तारीख रिपोर्ट है, वो देखेंगे, उसके बाद आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमारे साथ रहिएगा।
अगरसिंह की बावली में है, नीचे गए थे, देखा उसको किस तरह के पत्थर का इस्तेमाल हुआ, पानी कहाँ तक आता था, पानी के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि पानी अगर नीचे होता था तो उसको किस तरीके से जो है ऊपर ले जाते थे। एक तो ये सीढ़ियाँ हैं, और उसके अलावा भी जो है यहाँ पे बीच में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जैसा मैं नीचे दिखाऊंगा आपको कि नीचे से जो है ये सीढ़ियाँ इस तरीके से जो है ऊपर हैं। और अब मैं आपको कैमरामैन को मैं बोलूँगा कि वो मेरे पीछे पीछे आए, तो मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सीढ़ियाँ कहाँ जा रही हैं। आइए, ये देखिए रोशनी के लिए ये जगह है, आप यहाँ बैठिए आराम से इस तरीके से, आप उसको एंजॉय कीजिए, किताबें पढ़िए, लिखिए। जो राइटर हैं, जो स्कॉलर्स होते हैं, उस्ताद होते हैं, जिनको मतलब किताबें लिखने का शौक़ होता है, वो ऐसी ही जगह की तलाश में रहते हैं, उनको ऐसी जगह कोई कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो जहाँ पे वो अच्छी तरीके से लिखें। चलिए फिलहाल हम अपना सफ़र आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं कि ये सीढ़ियाँ हमें कहाँ तक लेके जाती हैं। ये देखिए अंधेरे से निकल के हम लोग पहुंच गए उजाले में, ऊपर की तरफ आ गए हैं। पानी अगर यहाँ तक होगा तो यहाँ से आराम से उससे जो है एंजॉय किया जा सकेगा। क्या होता था कि गर्मियों में जो गर्म हवाएं होती थी, जो ऊपर से नीचे आती थी, फिर तो उसके बाद जब वो वापस जाती थी, वो ठंडी हवाओं में तब्दील हो जाती थी। तो बावली का एक और ये यूज़ भी है। चलिए फिलहाल हम लोग बाहर चलते हैं, ऐसा ना हो कि बावली में ही हम लोग खो जाए। चलिए जिस तरीके से आम जिंदगी की ज़रूरत के लिए बावली थी जो पानी की ज़रूरत पूरी करती थी, उसी तरीके से नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जो है यहाँ पे एक मस्जिद की भी तामीर किया गया था। मस्जिद छोटी थी बट मस्जिद यहाँ पे थी। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वो टूट फूट गई है, बट मस्जिद बहरहाल अभी तक मौजूद है, जिसका निशान अभी तक मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर। ये छोटी सी मस्जिद कभी उसी ज़माने में, सिर्फ 15वीं या 16वीं सदी में इसको बनाया गया था। देख सकते हैं इसमें अरबिक में लिखा हुआ है, अरबिक कैलीग्राफी। ये कभी उस तरीके पीछे भी थी मस्जिद, मैं दिखाना चाहूँगा, पीछे भी कभी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, अभी फ़िलहाल ये टूट गई है। चलिए अंदर आते हैं और इसको देखते हैं। मस्जिद का एक ये वाला हिस्सा अभी तक मौजूद है, नमाज नहीं होती क्योंकि अभी ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, नमाज यहाँ पर अलाउड नहीं है। ये हिस्सा मौजूद है अभी उसके, जबकि ये वाला जो हिस्सा है कभी थोड़ी बड़ी रही होगी तो ये वाला हिस्सा देखिए टूट गया है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये किसी ने तोड़ा नहीं है, ये अपने आप ही टूटा है इस तरीके से। तो ये चीज़ जो है प्रूव करती है कि किसी ज़माने में, खैर हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, किसी चीज़ को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, कि हिंदुस्तान में खासकर दिल्ली में मुसलमानों का दबदबा था और उनकी बनाई हुई इमारतें आज भी जो हैं गवाह हैं, शाहिद हैं कि कभी यहाँ से जो है बादशाह और सुल्तान जो है अपना चलाए सल्तनत को चलाया करते थे। फिलहाल जो मैं अभी यहाँ पे बावली में था, जो कनॉट प्लेस, जो दिल्ली का दिल कहा जाता है, वहाँ था। मैंने आपको एक पुरानी एक स्टेपवेल बावली से जो है रूबरू कराया। फ़िलहाल के लिए आसिफ खान मैं हूँ, जिसे इजाज़त दीजिए आप। मैं आपको अगली बार फिर किसी और मकाम पर मिलूँगा, तब तक के लिए खुदा।
जी बहरहाल आसिफ साहब ने फिर आपको दोबारा उसी जगह की सैर करवाई जिसकी वो बहुत बार आपको सैर करवा चुके हैं, लेकिन बहरहाल ये प्रोग्राम जो है बहुत मेरे ख्याल से पसंद किया जा रहा है हमारे कंट्रोल रूम से, तो इस वजह से ये दोबारा दोबारा दिखाया जाता है। बहरहाल हमारे साथ जो है डॉक्टर साहबा स्टूडियो में पहुँच चुकी हैं। इससे पहले कि डॉक्टर साहब पास जाएँ, हमारे पास एक सवाल है अली आगा साहब ने, जल्दी से मैं पूछूंगा, अलबत्त अगर वक्त हुआ तो आप आज जवाब दें, नहीं हुआ तो बाद में। उन्होंने पूछा है कि छोटे बच्चों को गाय का दूध पिलाया जा सकता है या नहीं, इससे बच्चे पर क्या असर हो सकता है, अलबत्त अगर बच्चे की उम्र भी बता देते तो बेहतर होता। बहरहाल ये सवाल है उनका, आपके पास आप लोगों को, आप लोग अपनी गुफ्तगू चलाएं आगे और अगर वक्त मिला तो आज जरूर इसका जवाब दे दीजिएगा।
जी नाज़रीन, हमारी मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ ला चुकी हैं, हम वक्त को ज़ाया किए बगैर फ़ौरन उनके पास चलते हैं, अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब।
वालेकुम अस्सलाम।
बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़,
बहुत शुक्रिया रुबाब एक दफ़ा फिर से बुलाने का।
नहीं आप बस आपकी बातें इतनी पसंद आती हैं हमको कि आपको बार बार हम बोलते
आने थे।
जी डॉक्टर साहब, आज का मौजू बच्चों में डिप्रेशन या ज़हनी दबाव और कशीदगी इस बारे में है। सबसे पहला और अहम सवाल, इसकी वजूहत क्या है?
असल में बच्चों में ज़हनी दबाव कशीदगी की बहुत ज़्यादा वजूहत हैं।
जी,
एक वजह तो ये है कि बच्चों का कॉम्पिटिशन, एक दूसरे के साथ मुकाबला पढ़ाई को लेकर और दीगर चीज़ों को लेकर, एक तो आजकल यही हम लोगों का हाँ ट्रेंड हो गया है कि उसके नंबर ज़्यादा हैं तो तुम इतनी मेहनत करो। ये दूसरी वजह ये है कि माँ बाप में अक्सर इख्तलाफात बच्चों में ज़हनी दबाव की वजह बनता है, जैसे कि माँ बाप में अलहदगी अक्सर बच्चों को किसी एक से जुदा कर देती है, या माँ बाप बच्चों को बोर्डिंग स्कूल्स में आजकल भेज देते हैं तो उस वजह से बच्चों में डिप्रेशन आ जाता है। और उसके अलावा ये होता है कि अक्सर बच्चे जब माँ बाप जगह चेंज करते हैं, जैसे कि अपना मुल्क छोड़ के किसी और जगह चले जाते हैं, तो फिर वहाँ से बच्चों की एक इमोशनल अटैचमेंट होती है अपनी पुरानी जगह से, तो फिर वो इस वजह से बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। उसके अलावा बच्चों को डांटते हैं बिला वजह माँ बाप, उन पर अपने मर्जी अपने फैसले थोपते हैं, तो बच्चे इस वजह से बहुत स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और इसकी बहुत ज़्यादा वजूहत हैं जो कि मैं साथ साथ बताती जाऊंगी कि
चले। जी, तो अब ये कुछ सारा सी रोशनी हमने डाल दी कि इसकी वजूहत क्या हैं, इसकी अलामतें भी हैं, बच्चे किस तरह दिखाते हैं इसको डिप्रेशन को अपने?
बच्चे जो हैं एक तो नाखून कुतरते हैं, उसके अलावा अक्सर बच्चे खामोशी और अलहदगी इख्तियार कर लेते हैं। कुछ बच्चे चिड़चिड़ापन इख्तियार करते हैं और कुछ जो हैं वो बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। उसके अलावा ये कि पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, लोगों के साथ इतनी दोस्ती नहीं करते, दूसरे बच्चों के साथ इतना घुलते मिलते नहीं हैं, अलहदा अलहदा रहते हैं, और अक्सर बच्चों में कोई ना कोई बीमारी किसी अलामत की सूरत में सामने आ जाती है।
ठीक, अब यानी मैं ये भी पूछना चाहूँगी, हमने बात कर ली इस बारे में, तो इसकी कुछ ख़ास किस्में हैं, डिप्रेशन की लेवल्स हैं कोई या नहीं?
लेवल ये कि आप शुरू में जब डिप्रेशन होता है तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ का आगाज़ होता है। माँ बाप बच्चे को जब डांटते हैं या तो वो थोड़ा महसूस करते हैं, अक्सर माँ बाप बच्चों में बराबरी नहीं करते तो वो ये चीज़ महसूस करता है, पर जब ये चीज़ बहुत ज़्यादा होने लगती है तो फिर बच्चा जो है इससे ज़्यादा मुतासर होता है। माँ बाप को थोड़ा चाहिए कि वो इस तरीके से करें, क्योंकि बच्चे पे मुआशरे से ज़्यादा घर का असर होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, बालिग होता है, तब मुआशरे के असरात जैसे कि सियासी असरात भी मुरतब होने शुरू होते हैं उसकी साइकोलॉजी पे, पर लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो तब वो सिर्फ फैमिली को देखता है, माँ बाप को देखता है, तो ये चीज़ें तब उस पर बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती हैं। अक्सर माँ बाप में से कोई तंबाकू नोशी या अल्कोहल का इस्तेमाल करता है तो बच्चा उससे बहुत ज़्यादा होता है कि डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, या माँ बाप में से किसी की जुदाई, जैसे कि माँ बाप में से कोई फोत हो गया है तो वो बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा सदमा होती है, या माँ बाप में से सेपरेशन हो गई है तो ये एक बहुत बड़ी वजह होती है।
जी, आपने तो यहाँ तो वालदैन के किरदार के बारे में बताया थोड़ा, इसमें माशरे का बता रही थी कुछ इस बारे में कि क्या असर
बच्चों के लिए, तो पहले घर होता है उसके बाद स्कूल होता है, यही होता है, फिर असातिज़ा जो हैं वो भी अक्सर इस चीज़ में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। आजकल हमारे यहाँ बच्चों में एक चीज़ देखने आ रही है कि लिविंग स्टेटस को लेके वो बहुत कॉन्शियस हैं, बच्चे के फलां बहुत अमीर घराने से है, हमारे पास ये चीज़ नहीं है, मादी चीज़ों की को लेकर, उनका हसद लेकर। आगे मैंने शायद दो वजूहत खौफ और हसद किए थे, ये जब बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाते हैं तो ये भी स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह बनते हैं।
जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, यहाँ पे चलते हैं खुर्रम भाई के पास, और मेरे ख्याल से हमको भी
जी बिल्कुल चलेंगे, हम लोग एक छोटा सा वक्फा लेंगे, थोड़ा सा ताज़ा दम होके आते हैं और फिर जो है दोबारा जो है गुफ्तगू डॉक्टर अनम की सुनेंगे, तो चलते हैं छोटा सा वक्फा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और भी हमारे पास बहुत सी ईमेल्स हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे, लेकिन चलते हैं रुबाब के पास ताकि रुबाब गुफ्तगू को आगे चला सकें।
बहुत शुक्रिया खुर्रम। डॉक्टर साहिबा, इसकी जो हमारा अभी मौजू चल रहा है कशीदगी या डिप्रेशन, इसके नतज बच्चे को अगर ये हो जाए तो क्या है?
अक्सर बच्चे तो ख़ुदकुशी कर लेते हैं जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार होते हैं। उसके अलावा बच्चे, मैंने आपको बताया कि बहुत ही मंशियात का शिकार हो जाते हैं अक्सर बच्चे, तंबाकू नोशी करना शुरू कर देते हैं, माँ बाप से लड़ झगड़ कर घर से अक्सर चले जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। नुकसान तो इसके बहुत ज़्यादा हैं, अक्सर बच्चों में बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, जैसे कि दिल की बीमारियाँ, सरतान डिप्रेशन की एक बहुत बड़ी वजह है।
अच्छा।
उसके अलावा डायबिटीज़ हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से जितनी भी डिजीजेज हो सकती हैं,
यानी बीपी का
ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता
जी,
है
जी। ये तो यहाँ तक ही थी। एक बहुत अहम सवाल, ये एक बीमारी है जिससे इसको निमटना मेरे ख्याल से इतना शायद आसान ना हो, मेरे ख्याल से, क्योंकि एक जहनी बीमारी है। वालदैन और असातिज़ा का अगर आप बताएं किरदार इसमें, किस तरह निमटा जाए इस बीमारी से?
असातिज़ा के लिए ये है कि वो सब बच्चों में बराबरी करें। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को ये चाहिए कि वो एक तो बच्चों को ट्रांसपोर्ट मुहैया करें सब बच्चों को, ताकि कोई अपनी गाड़ी में ना आए और दूसरा बच्चा उसको देख के ये ना सोचे कि उसके पास ये चीज़ है और हमारे पास ये चीज़ नहीं है। यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि सब बच्चे एक सा लिबास पहने, ताकि उनको ये ना लगे कि उसके पास अच्छे कपड़े हैं मेरे पास नहीं है। उसके अलावा ये होना चाहिए कि स्कूल को लंच मुहैया करना चाहिए। मैंने ये एक बात बहुत अच्छी यहाँ पे ईरान में नोट किया कि ये लोग बच्चों को लंच देते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में हर बच्चा अपनी मर्जी का खाना अपने घर से लेकर आता है, कैंटीन से ले रहा है, तो इस तरीके से दूसरे बच्चे को कॉम्प्लेक्स होता है और फिर वो आगे चल के जब वो बहुत ज़्यादा हद से बढ़ जाता है तो डिप्रेशन और स्ट्रेस की फॉर्म में नज़र आते हैं बच्चे के सामने नज़र आते हैं।
तो ये तो हो गया असातिज़ा या स्कूल का जो आप किरदार बता रही है। अब वालदैन को इससे निमटने के लिए क्या करना चाहिए, लेकिन इस बारे में मेरे को कहा जा रहा है कि मैं फ़ौरन चलना है खुर्रम भाई के पास, इस बारे में इंशाल्लाह बाद में पूछूंगी।
बहुत शुक्रिया, बात आप लोग आगे चलाएंगे, हम आपको वक्त देंगे, लेकिन सिर्फ ये है कि मैं बस थोड़ा सा आप लोगों का वक्त लूंगा और चलते हैं हम लोग एलसीडी की तरफ। जैसे कि आप सबको नाज़रीन पता है कि ईरान में मुकद्दस दिफा का हफ्ता जो है वो शुरू हो चुका है, और ये वो हफ्ता है, मनाया हफ्ता इसलिए मनाया जाता है कि आज का दिन जो है 31 शहरीवर ईरानी महीने के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो ये वो दिन है जब इराक और जो गर्बी ताकतों ने मिल के एक किस्म का ईरान पे हमला किया, और ये हमला इस वजह से था के तकरीबन 20 माह गुजरे थे ईरान का इस्लामी इंकलाब को कामयाब हुए, और इसका इस हमले का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था, वो ये था कि ये गर्बी ताकतें जो हैं वो नहीं चाहती थीं कि इस तरह की एक हुकूमत जो दीन से सरशार हो और दीन की बुनियाद पे, इस्लाम की बुनियाद पे हो, और इस तरह की एक हुकूमत बनाई जा सके, इसी वजह से जो है ये हमला किया गया। और बहरहाल इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि ईरान उस टाइम पे बिल्कुल भी इस हालत में नहीं था कि वो इस किस्म के हमले का जवाब दे सके। अगर सिर्फ इराक होता तो फिर भी शायद एक बहस होती कि चलो एक मुल्क से जंग हुई, बल्कि पूरा जो गर्बी ममालिक जो थे, जो इस्लाम दुश्मन ममालिक थे, वो सारे के सारे इस लाइन में खड़े हुए थे, और यहाँ तक कि आप लोगों को पता है कि केमिकल वेपन का इस्तेमाल और मुख्तलिफ किस्म के जहाज़ जो है इराक को दिए गए, सदाम को दिए गए, ताकि वो जितना ज़्यादा ईरान को नुकसान पहुंचा सकता है वो नुकसान पहुंचाए, और उस सिलसिले में उसने नुकसान पहुंचाया। लेकिन जो ईमान की ताकत ईरानियों के अंदर थी उस वक्त, और जंग के जब उन पर जो है डाल दी गई, उसने इनकी मदद की कि वो जो है बहरहाल इस जंग में कामयाब हों। और जैसे कि आप इस तस्वीर में भी देख रहे हैं, एक बड़ी दिलचस्प बात जो देखने को मिलती है, जैसे कि कल जैदी साहिबा के साथ भी मेरी बात हुई, और उसमें ये था कि आप एक तो हर पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों ने इस जंग में हिस्सा लिया, यानी आपको इस जंग में अगर आप इसकी तारीख उठा के देखेंगे तो आपको डॉक्टर्स से लेके इंजीनियर्स से लेके हर फील्ड का एक बंदा जो था वो आपको वहाँ वो उस जंग में नज़र आए। और उम्र के लिहाज से जो मैंने अभी तस्वीर लाई है उसमें आप देख रहे हैं कि उम्र के लिहाज से शायद मैं ये अगर कहूँ तो गलत नहीं होगा, 14 साल 15 साल के बच्चों ने भी शिरकत की। और ख़वातीन का रोल जो है वो एक बहुत ही अहम रोल था, जिस पर बात करने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त की ज़रूरत है, लेकिन यह है कि ख़वातीन ने भी पूरा साथ इस जंग में अपने मर्दों का जो जंग लड़ रहे थे उनका वहां पर दिया। बहरहाल ये कुछ तस्वीर थी जो मैं आपकी खिदमत में लेके आया, और आप जैसे कि देख सकते हैं कि जंग के मैदान में यहां पर कितनी छोटी सी जगह पर बैठ के जो है यहां पर नमाज अदा की जा रही है। तो बहरहाल ये जज्बा था जिसकी वजह से ईरान अपनी इस जंग में 8 साल जंग में बहरहाल कामयाब हुआ। यहां पर एक लेंगे छोटा सा वक्फा और उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। جی ناظر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. خوبصورت مناظر آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا, امید ہے کہ آپ کو پسند آئیں گے. بہرحال وقت ہوا ہے تھوڑا سا صحت سلامتی کی تھوڑی سی بات کر لیں. لہسن کی بات بہت کی جاتی ہے, بہت بار اس کے بارے میں آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا, لہسن پیاز اور یہ جو ساری اس طرح کی سبزیاں ہیں. بہرحال لہسن کی بات تھوڑی سی بات کروں گا میں, اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ لہسن بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے, دل کی بیماریوں کو کنٹرول کرنے کے لیے, کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو نزلہ زکام بہت زیادہ رہتا ہے اس کے لیے, اور کینسر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی, کینسر سے بچنے کے لیے بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے. لہسن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وائٹمن سی, بی سکس, میگنیز, سیلینیم اور بہت سے اینٹی آکسیڈنٹ, جیسے کہ اینٹی آکسیڈنٹ کا میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا, یہ وہ چیزیں ہیں ہمارے بدن میں جو ہمیں کینسر سے بچنے میں مدد دیتی ہیں. تو لہسن کا استعمال کیا جاتا ہے. ایک جو بڑی دلچسپ چیز لہسن کے بارے میں یہاں پر لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ 2012 میں ایک ریسرچ ہوئی, اور ریسرچ کے میں یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بلڈ پریشر کنٹرول کرنے کے لیے خود لہسن کو دیا گیا, نہ کہ اس سے بنی ہوئی کسی دوائی کو. کہا گیا کہ 200 ملی گرام جو لہسن کا پاؤڈر ہے اس کو 3 ٹائم جو ہے جو مریض جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ تھا ان کو لہسن دیا گیا, اور نتائج جو دیکھنے کو ملے وہ یہ تھے کہ ان کا بلڈ پریشر کنٹرول ہو گیا. نزلہ زکام جن لوگوں کو بہت زیادہ رہتا ہے ان کے بارے میں بھی ان کے لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی غذا میں, اور اگر کوشش کریں کہ خالی بغیر اس کو تلے ہوئے یا بغیر پکا ہوا جو لہسن ہے اس کو اپنے کھانے کے ساتھ استعمال کریں تو بہت اچھا ہے. پیٹ کے اور آنتڑیوں کا کینسر کے بارے میں, کینسر سے بچنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جتنا زیادہ آپ اس کا لہسن کا استعمال کریں گے تو اتنا آپ اس طرح کے کینسر سے بچ سکتے ہیں. بہرحال یہ تو لہسن کی بات تھی, چلتے ہیں رباب کے پاس تاکہ رباب آگے چلا سکیں.
جی بہت شکریہ خورہ. میں ناظرین کو بتانے چلوں کہ ہمارے پاس نئی دلی اسٹوڈیو بھی آج ہمارے ساتھ ہوں گے, وہاں پہ بھی ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان ہوں گی ہمارے ساتھ, ان سے بھی ہمیں بہت سارے سوال پوچھنے ہیں. تو میں فوراً یہاں پہ پہلے ڈاکٹر انم زہرا سے بہت مختصر طور پہ, ہم والدین کے کردار کے بارے میں بات کر رہے تھے, اگر بہت مختصر سا جواب دیں.
ایک تو ماں باپ کو بچوں میں برابری رکھنی چاہیے, دوسرا بچوں میں موازنہ نہیں کرنا چاہیے, تیسرا یہ کہ ماں باپ کو چاہیے کہ گھر کے مسائل بچوں کے سامنے مت ڈسکس کریں جس سے وہ ان کو پریشانی ہو, آپس کے لڑائی جھگڑے بچوں کے سامنے نہ کریں, گھر کے ماحول کو بہتر رکھیں, بچوں پر زبردستی نہ کریں کہ تم لوگ نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے, ان کو اپنے فیصلے خود کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اس کے علاوہ ماں باپ اور بچوں میں دوستی ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنے مسائل کو شیئر کر سکیں.
بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ آپ تشریف لائی, بہت مفید باتیں آپ نے بتائی. جی
بہت شکریہ رباب, آپ لوگوں کی گفتگو, امید ہے کہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوگی. بہرحال ڈاکٹر انم زہرا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, انہوں نے ہمارے پروگرام میں ہمیں ٹائم دیا. ہمارے پاس وقت ہوا ہے خوبصورت سی موسیقی اور آواز ہے مازیار اسری صاحب کی, تو چلتے ہیں موسیقی سنتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوں گے اور پھر ایس این جی جائیں گے. مازیار اسری کی آواز میں آپ لوگوں نے خوبصورت سی ایرانی موسیقی سنی, امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی. بہرحال میں یہاں پر آ گیا ہوں اور ہمارے پاس علی آغا صاحب نے جو ہے کریکشن ہمارے لیے بھیجی ہے, اور انہوں نے کہا ہے یہ جو تصویر آپ نے دکھائی ہے ہندوستان کے کارگل کی ہے. جی معاف کیجئے گا, کیونکہ یہ جو ہے ملتی جلتی پہاڑیاں ہیں ساری, تو میں نے اس وجہ سے میں نے کہا شاید گلگت بلتستان کی ہے. بہرحال کارگل کی ہندوستان کی تصویر تھی جو میں نے پروگرام کے شروع میں دکھائی. بہت شکریہ علی آغا صاحب. میرے پاس یہاں پر ایک میں چیز پڑھ رہا تھا اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ زندگی کا مقصد جو ہے وہ دوسروں کی مدد کرنا ہے, لیکن اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کم از کم دوسروں کو نقصان نہ پہنچائیں. یہ بڑی اچھی بات ہے.
جی یہ بھی ہے,
ٹھیک ہے,
اور مدد ہی نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ یعنی حد دخن ان کو تنگ بھی نہ کریں.
بالکل, اور جو ہے دوسری یہاں پر اور بھی بہت سی باتیں بارہ لکھی ہوئی ہیں. تو کیا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ چلتے ہیں ہندوستان, ہماری ایس این جی جو ہے وہ تیار ہے. ہمارے ساتھ کون ہے ایس این جی میں؟
محترمہ سعیدہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی نئی دلی سے. آج ان سے ہم بات کریں گے اسی موضوع پہ, بچوں پہ ڈپریشن اور کشیدگی کے بارے میں. جی السلام علیکم. میرے خیال سے ہمارا
سلام.
جی جی بہت بہت خوش آمدید اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا.
شکریہ, ہم آپ کے بھی شکر گزار ہیں
جی
کہ ہمیں موقع دیا جس سے ہماری آواز آپ تک پہنچ سکے.
جی
عوام تک پہنچ سکے آپ کے ذریعے.
جی محترمہ سعیدہ رضوی صاحبہ, میرا سوال آپ سے یہ ہوگا کہ بچوں پہ ڈپریشن یا کشیدگی, یہ اس کی آپ کی نظر میں وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟
मेरी नज़र में इसकी वजूहात ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि हम जब बच्चे को आगोश में मेरे होता है तो हम माएँ कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है और हम सही तरीके से खुद उसको नहीं राह दिखा पाते हैं, क्योंकि बच्चे की जब पैदाइश होती है तो बच्चा क्या है, एजुकेशन इज नेचुरल हारमोनियस प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट है, यानी उसकी तालीम का सिलसिला शुरू हो जाता है और हमें उसके लिए अपने को नमूने अमल बनाना चाहिए। ये पहली वजह है कि हम बच्चे के सामने ऐसे पेश आए कि बच्चा मुझे फॉलो करता जाए, और हम जितना अच्छा किरदार पेश करेंगे बच्चा खुद ब खुद अच्छा होगा।
जी ये तो बहुत खूबसूरत बात आपने बताई, बहुत नई और ख़ूबसूरत बात थी नाज़रीन के लिए भी। आपने यहाँ पे वालदैन का तो बता दिया कि ये माँ के आगोश में बच्चे को किस तरह से तरबियत मिलती है कि वो डिप्रेशन से बच सके, माशरे का किरदार के बारे में आप क्या बताएंगे हमें?
जी जी, माशरे में जब आता है तो एक मैं कुरान के सिलसिले से हवाला दूंगी कि मेरे कुरान की एक आयत है इकरा बिस्मे रब्बुकल लज़ी, जो कि पहली आयत है कि पढ़ो। तो जब हम बच्चा माशरे में आने लगे और उसे ये समझ आने लगे तो मुझे उसे ये तालीम देना चाहिए कि वो सिर्फ पढ़े, और जब पढ़ाई के तरफ उसका ध्यान लगने लगता है तो माशरे की और चीज़ों से उसका खुद ब खुद ध्यान हट जाएगा।
सही जी, ये भी बहुत खूबसूरत बताया आपने वालदे के एक असातिज़ा जो है इसमें किस तरह का किरदार निभा सकते हैं। मैं एक और बात आपके पूछना चाहूँगी कि नतायज या इसके नतायज किस तरह से हो सकते हैं, या अलामतें बच्चे किस तरह जाहिर करते हैं इस बारे में?
हाँ, अलामतें ये है कि पहले तो बच्चा चुप रहने लगता है, खामोश रहेगा, अपनी बात कहेगा नहीं, तो उसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं माँ बाप होते हैं, क्योंकि बच्चों में हम इंटीमेसी पैदा करें, एक दूसरे से करीब रहने की आदत रखें, बच्चे को एज ए फ्रेंड रखें, दोस्त की तरह हम पालें, जिससे अगर उसे कोई परेशानी हो तो वो हमें बताए। लेकिन ये नतायज जाहिर ऐसे ही होते हैं कि अगर हम ये नहीं कर सके तो बच्चा धीरे धीरे हमसे दूर होने लगता है, पहले वो खामोश रहने लगेगा, फिर वो खामोशी थोड़े थोड़े दिन थोड़े वक्फे के बाद चिड़चिड़ेपन में बदल जाएगी, और यही फिर चिड़चिड़ापन बढ़ता जाता है, कोई भी शक्ल अख्तियार कर सकता है। दूसरी मंजिल ये होती है बिगड़ने की, बच्चे की झूठ बोलना, क्योंकि बच्चा जब बिगड़ने लगता है तो वो झूठ का सहारा लेने लगता है, और यही झूठ उसे खाने की कोठरी तक भी पहुंचा सकता है, और यही झूठ से हम अगर अपने बच्चे को बचा लें तो वो
सही। अच्छा रिजवी साहब, एक सवाल है बड़ा अहम, और वो ये है कि अक्सर माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को एक दूसरे, मसलन बड़ा भाई है तो छोटा भाई जो है उसका सामने बैठा हुआ है, बड़े भाई को अगर डांट पड़ी है तो छोटे के सामने पड़ी है, छोटी बहन के सामने पड़ी है, ये कैसे इस चीज़ को ख़त्म कर दिया जा सकता है? ये मुझे भी मालूम है, आपको भी मालूम है, और हमारे सारे माशरे को मालूम है कि ये गलत चीज़ है, लेकिन फिर भी ये काम किया जाता है। माँ बाप की लड़ाई बच्चों के सामने, बड़े बेटे को डांटना छोटे के सामने, छोटे को डांटना बड़े के सामने, ये इसका क्या, आप क्या पैगाम देना चाहेंगे वालदैन को? जी तस्वीर, हमारी जो वीडियो है SNG की, उसमें थोड़ा सा मसला हो गया। बहरहाल यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा वक्फा लेंगे और थोड़ा सा ताज़ा होकर आते हैं और फिर प्रोग्राम को आगे चलाते हैं, हमारे साथ रहिएगा।
जी नाज़रीन, दोबारा आपको खुश आमदीद कहते हैं आपके अपने प्रोग्राम सुबह जिंदगी में। जी खुर्रम भाई, क्या
बहरहाल हमारा जो है थोड़ा सा रबते का जो है थोड़ा सा मसला पेश आ गया था। बहरहाल हमारी मकसद की बात हो रही है और हमें बताया जा रहा है कि हमारा दोबारा रबता जो है वो जुड़ गया है हिंदुस्तान के स्टूडियो से। तो मैं एक बार फिर सलाम अर्ज करता हूँ और सवाल अपना दोहराता हूँ कि माँ बाप बच्चों के सामने लड़ते हैं, बच्चों को बड़े भाई को छोटे भाई के सामने डांटना, या ये जो चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि हम सबको पता है गलत है, लेकिन उसके बावजूद घर के मसाइल, बाहर के मसाइल और अजीबोगरीब किस्म के मसाइल उस छोटे से नन्हे मुन्ने से जहन के ऊपर डाल दिए जाते हैं, क्या किया जाए इसका?
के लिए ये है कि बस हम बच्चे को खुद किसी चीज में इतना फंसाए रहें, और उस फंसाने का सबसे अच्छा सिलसिला ये है कि हम उसे बस तालीम की तरफ खुद रुजू करें। जब तक बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, हम उसे कुछ ऐसी चीजें लाके दें जिससे उसका जहन उन चीजों में रहे और उससे तालीम भी उसकी थोड़ी थोड़ी बढ़ती रहे। जैसे कुछ चीजों को गिनना है या जोड़ना है या अल्फाजों के हरूफ हैं, वो लाकर जब तक स्कूल में नहीं जाता उससे पहले हम रख दें, वो देखता रहे, उस पर कुछ दिलचस्पी पैदा करें, उसके जहन को बटाए रहें। क्योंकि घर में कभी ना कभी चाहते हुए भी ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं, वालदैन चाहते छुपाना लेकिन आ जाते हैं सामने। जब बच्चा दूसरी तरफ बच्चे का रुझान होगा तो खुद ब खुद इन चीजों से रुझान हटता चला
जाए।
और दूसरी बात यह है कि जब थोड़ा समझ आने लगे तो उसे हम दीनी तालीम की तरफ भी उसके जहन को ले जाए।
सही। अच्छा रिजवी साहब, आपने ठीक बात की कि बच्चे को है जो है उसको मशगूल रखा जाए पढ़ाई की तरफ, लेकिन घर का अगर माहौल ठीक नहीं होगा, घर का अगर माहौल पढ़ाई वाला नहीं है तो वो बच्चा कैसे पढ़ सकता है?
हाँ, ये एक सवाल है अहम। घर का माहौल अगर पढ़ाई का नहीं है तो बहुत मुश्किलात आ सकती हैं। ये है कि फिर हमें अपने किरदार को, वही बात जो मैंने शुरुआत में कही थी कि नमूना अमल बना के रखना है, चाहे हम घुटते रहें आप अंदर अंदर, लेकिन बच्चे के सामने मुझे नहीं जाहिर करना चाहिए कि घर में क्या चल रहा है, कैसे मसाइल हैं, ताकि वो कम से कम खुशगवार जिंदगी जो आया है नई इस दुनिया में तो यहाँ से कुछ हासिल करे। और जो एजुकेशन में यह है या चाइल्ड साइकोलॉजी में है कि इंसान के अंदर 12 फीलिंग होती हैं, तो वो उसकी हम सारी फीलिंग्स को पनपने दे, सारी स्किल्स को खुलने दे। जब वो स्किल्स अपने आप खुल कर आएंगे तो खुद ब खुद बच्चा तरक्की करेगा।
जी रिजवी साहब, मुझे एक और सवाल जो अभी याद माया, अक्सर देखा गया है वालदैन अपना गुस्सा बच्चों पर निकालते कुछ इस तरह के, उनको मार पीटते हैं, अक्सर देखा गया, ये होता भी है, इसका डिप्रेशन पे किसका कितना ताल्लुक है, बच्चे की मारपीट का और डिप्रेशन का आपस में?
जी, इसके बहुत करीबी ताल्लुक है, और अगर वालदैन ऐसा करते हैं तो ये समझिए कि उन पर हम जुल्म करते हैं। क्योंकि जितनी बच्चों के लिए कहा जाता है कि जन्नत है पैर के नीचे वालदैन की इताअत करना, उसी तरह से वालदैन की जिम्मेदारी है कि हम बच्चों से प्यार से बात करें, हम बच्चों की गलतियों को नजरअंदाज कर दें, क्योंकि वो बच्चे हैं अभी, उनका दिमाग मेच्योर एज में जब वो पहुंचेंगे, इन्हें अभी उम्र के कितने हिस्से होते हैं भाई, इन्फेंट हुआ और उसके बाद फिर एडोलसेंस, इसी तरह से उम्र के तबकात बढ़ते जाते, तो जब वो तीसरे तबके को पार कर लेता है उम्र के, तब उसका जहन मेच्योर होता है। खुदा ने भी माफ किया तो हम क्या चीज है,
रिजवी साहब एक सवाल बहुत अहम जिसकी तरफ आपने खुद भी इशारा किया कि बच्चों को अगर बच्चों के साथ दोस्त बन के ना रहा जाए तो बच्चा एक वक्त आता है जब वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। बड़ा ही अहम नुक्ता है बच्चे की नफ्सियात में, साइकोलॉजी में, ये जो दोस्त बन के रहना है, ये बहुत से वालदैन को इस बात की समझ नहीं आती कि दोस्त बन के रहने का मतलब क्या है। कुछ बहुत नजदीक हो जाते हैं, कुछ बहुत दूर हो जाते हैं, इसको हमारे वालदैन के लिए थोड़ी सी इसकी वजाहत करें।
मैं ये सिर्फ कहना चाहूंगी, पता नहीं, लेकिन ये मेरा खुद का प्रैक्टिकल भी है और बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट ने भी ये कहा कि माँ और बाप में से एक में को बहुत ज्यादा इंटीमेसी रखनी चाहिए, एक को अपना रोब बनाकर। तो बाप जो है एडमिनिस्ट्रेशन करता है घर को, घर पे उसका रोब होना चाहिए, बाप इन मसाइल में ना पड़े, माँ जो है वो उन बच्चे से इंटीमेसी रखे ताकि बच्चा जो अपनी हर मुश्किलात को कहे उनसे जिक्र करेगा तो जाहिर सी बात है कि उनके करीब होगा, और जब डांटने की जरूरत होगी तो माँ उसे डांटेगी भी और मार के भी थोड़ा बहुत। वैसे मैं मारने के कायल नहीं हूँ, क्योंकि बहुत बड़े किसी साइकोलॉजिस्ट ने यह कहा था कि स्पेयर द रोल स्पॉइल द चाइल्ड, अगर डंडे से मैंने डराया तो क्या डंडा हटा और बच्चा बिगड़ा, तो माँ बाप को उतना नहीं, लेकिन हाँ कभी कभार अगर जरूरत होती है तो थोड़ी सी नसीहत करे, लेकिन हाँ बाप एक अपना अलग रोब बनाकर रखे, खुद ब खुद सारा निजाम
ठीक रहेगा,
सही चलेगा।
सही। अच्छा रिजवी साहब, हमारे दीन में आया है कि 7 साल तक बच्चे को बादशाह बना के रखा जाए, घर में उसकी हर बात मानी जाए, जो वो करना चाहे उसको करने दिया जाए। माहिर नफ्सियात कैसे देखते हैं इस चीज को?
जी जी ये बात सही है, 7 साल तक तो बादशाह की उम्र होती है, लेकिन अगर हमें उसके मर्जी के खिलाफ करना है, उसकी मर्जी को नहीं मानना है, बच्चा मसलन कुछ कह रहा है जो चीज उसके लिए नुकसानदेह है, तो हम उसको किसी दूसरे तरह से उस बात को करेंगे या उससे कहेंगे कि जिससे उसका जहन बदल जाए, उससे उसका दिल खुद ब खुद हट जाए। जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, और दिल को खुद हटाने के लिए, जैसे बच्चा खेलने के लिए कह रहा है, बाहर जाने के लिए कह रहा है, तो हम घर में कुछ ऐसा खेल का या कुछ ऐसा शगल पैदा कर दें कि वो खुद ब खुद घर में रुक जाए। उस पर दबाव नहीं होना चाहिए, उसे कभी ये ना महसूस हो।
सही, बहुत शुक्रिया रिजवी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपने हमारे प्रोग्राम को टाइम दिया और बड़े ही अहम सवालात के आपने जवाब दिए। रुबाब, आपने कोई सवाल तो नहीं पूछा?
नहीं, मैं भी ये बोलूंगी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू रही है हमारी रिजवी साहिबा के साथ, और इंशाल्लाह नाज़रीन को भी गुफ्तगू पसंद आई होगी।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अभी हम कहाँ पर जा रहे हैं?
अभी हम वक्फा लेना है,
वक्फा ले लेते हैं छोटा सा, उसके बाद दोबारा आप खिदमत में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, फिर आ गया हम आप लोगों की खिदमत में। अली नाज़िर साहब ने एक बड़ी खूबसूरत यहाँ बात लिखी है, और उन्होंने कहा जिंदगी का असल मकसद खुदा की मारफत है, अगर मारफत आ गई तो जिंदगी बा मकसद गुजरेगी। जी ये एक बड़ी अहम बात लिखी है उन्होंने, और खुद अल्लाह ताला को जानना, उसकी ज़ात को पहचानना एक बहुत अहम वो है, हमारी ज़िंदगी का मकसद है। और जो इन्होंने ये बात की है कि अगर हम अल्लाह ताला की ज़ात को पहचान लें तो हमारी ज़िंदगी में मकसद हो जाएगी, तो मेरे ख्याल में इसका जो मतलब ये बनता है कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें इस दुनिया में क्यों भेजा गया, किस काम के लिए भेजा गया। और बहरहाल ये भी, और
मैं यहाँ पे भी एक छोटी सी बात आपके बातों में बोलती चलूँ कि असल में बात ये है कि अगर ज़िंदगी में मकसद आ जाए, ठीक, तो वो ज़िंदगी में वो जस्तजू भी आ जाती है, आगे बढ़ने की कोशिश, आपकी ज़िंदगी का हदफ बन गया, एक मकसद बन गया, वो मेहनत, वो लगन खुद ब खुद आ जाती है कि उस मकसद तक पहुंचना है, तो ये बहुत जरूरी है मकसद का होना।
बिल्कुल सही। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, और वो ये लिखी हुई है कि जो लोग दुनिया में कामयाब होते हैं, अभी हम मतलब दुनिया की बात कर रहे हैं कि जो मादी तौर पे अगर बात करें, तो उनके बारे में ये लिखा हुआ है कि वो बहुत ज्यादा अपनी जिंदगी में ख्वाब देखते हैं, वो जैसे जागते हुए ख्वाब देखने वाली बात होती है ना, और जो कहने का यहाँ पर मतलब है वो ये है कि वो अपने जो फ्यूचर है उसको देखते हैं कि हमने क्या करना है, उसको प्लान करते हैं बेहतर तरीके से, और अपनी जिंदगी को बड़ा वह मकसद गुजारते हैं। बहरहाल हमारे साथ कॉलर जो है हमारे साथ मौजूद है, सलाम अर्ज करता हूँ आपकी खिदमत में।
वालेकुम अस्सलाम,
बहुत शुक्रिया, नाम बताइएगा अपना।
मैं इंसिया फातिमा बोल रही हूँ।
इंसिया फातिमा, आपकी उम्र क्या है? आपकी आवाज़ तो माशाल्लाह बहुत प्यारी सी है।
मैं 16 साल की हूँ।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया बेटा कॉल करने का। जी इंसिया फातिमा, क्या कहना चाहेंगी?
मैं ईरान में मौजूद नाजरीन को स्कूल खुलने की मुबारक देना चाहती हूँ, और हफ्ता दिफा मुकद्दस की भी बहुत मुबारकबाद देती हूँ।
सही। जी, और इंसिया फातिमा आपको भी बहुत मुबारक, आज आपका स्कूल का पहला दिन भी होगा मेरे ख्याल से।
जी हाँ
जी, आप गए नहीं अब तक?
अभी मैं तैयारी कर रही हूँ स्कूल जाने की।
जी जी,
अच्छा हमारा प्रोग्राम देखती हैं आप?
जी।
कैसा लगता है?
बहुत अच्छा लगता है मुझे।
सही, बहुत शुक्रिया। अच्छा फातिमा, आपने अपने जिंदगी में कोई अपना एम रखा है, कोई मकसद अपना रखा है कि आपने क्या करना है बड़े होके? यस
जी, मैंने बड़े होके एक हॉस्पिटल खोलना है।
ठीक है,
माशाल्लाह जबरदस्त।
वो किस लिए?
सॉरी,
वो किस लिए? क्या आपका क्या उसमें प्लान क्या है कि हॉस्पिटल खोलना है? क्या पैसे कमाने हैं, लोगों की मदद करनी है, या आपको जब आप मरीजों को देखती हैं तो आपको दुख होता है बड़ा?
मुझे बहुत दुख होता है, और इसलिए मैंने एक हॉस्पिटल खोलना है, उसमें भी मुझे फ्री इलाज करना है।
ठीक, अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, और आप फिर इसका मतलब डॉक्टर भी बनना चाहती हैं?
जी हाँ।
सही, बहुत बहुत अच्छा, इंशाल्लाह हम सब दुआ करते हैं मिलके कि आप जल्दी जल्दी डॉक्टर बन जाएं, जल्दी जल्दी एक बड़ा सा हॉस्पिटल खोलें, और फिर जितने लोगों को जितने दर्द हैं, पेन हैं, उनके सारे पेन दूर कर दें।
बहुत शुक्रिया,
बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
जी, ये हमारी जवान कॉलर।
जी बिल्कुल, ये जवान कॉलर थी और बहरहाल जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें कॉल की और जो है हमारे प्रोग्राम में जो है हमारे प्रोग्राम को चार चांद लगाए। बहरहाल हमारा जो है कल का मौजू अगर हमारे नाज़रीन को बता दीजिए।
कल का मौजू बताते चलूँ नाज़रीन, फिजियोथेरेपी में जो इलाज में पानी की तासीर या पानी की अहमियत क्या है, इस बारे में हम कल बात करेंगे। यूनुस अहद भट्ट साहब हमारे साथ होंगे। जी आपके कोई सवाल, कोई भी आपको जो मसले में आपको फिजियोथेरेपी से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो ज़रूर हमें बताइएगा, हमें फेसबुक पर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह उनके जवाब हम आपको ज़रूर देंगे। और अली आगा साहब, बहुत बहुत माजरत के साथ कि आपने जो सवाल भेजा था वो दूध पीना जो था गाय के दूध का, इंशाल्लाह उसका भी इंशाल्लाह जल्दी आपको जवाब हम ज़रूर देंगे।
अच्छा, उन्होंने एक और सवाल भी पूछा है लेकिन वो जो है डॉक्टर आनम से मुतल्लिक नहीं था, तो वो हम जब हमारे डॉक्टर और डॉक्टर आएंगे तो उनसे उसका जवाब भी हम लोग इंशाल्लाह लेंगे। और यहाँ पर इजाज़ हुसैन साहब ने हमें सलाम पेश किया है और हम भी उनकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम पेश करते हैं और बहुत शुक्रिया, हमें हमेशा आप याद रखते हैं। और जी हमारे पास और भी यहाँ पर कुछ हैं कमेंट्स वगैरह, आप जितनी देर में हमारे नाज़रीन से बात करें मैं उतनी देर में जो है कमेंट्स वगैरह जो है।
बस नाज़रीन मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी का मकसद हम सब यही समझना है कि पढ़ाई में मकसद होना ज़रूरी है, नहीं, हर चीज़ में वालदेन के एहतराम से लेके छोटों को मोहब्बत देने में भी मकसद होना चाहिए आपका, हर चीज़ में अपने बहन भाई रिश्तेदारी निभाने में एक मकसद होना चाहिए, आगे बढ़ने में ज़िंदगी में दीन का भी एक मकसद होना चाहिए। वो जो एक बात लिखी थी कि अल्लाह को ढूंढना या अल्लाह को पहचानना, कहते कि ढूंढने से बोलते हैं महावारा खुदा भी मिल जाता है, मकसद होना ज़रूरी है हर चीज़ में, ना सिर्फ पढ़ाई में, ज़िंदगी के हर एक मौजू पे हर एक पहलू का मकसद होना ज़रूरी है। जी
जी, यहाँ पर जो है लगारी साहब ने लिखा है कि वक्त जिंदगी में हदफ का ना होना वक्त जाया करने के बराबर है।
बिल्कुल।
और जो है इन्होंने लिखा है कि मकसद के बगैर मंजिल का मिलना बहुत मुश्किल है। और जी बिल्कुल, ये जो है बड़ी इन्होंने प्यारी बात लिखी है कि बिल्कुल अगर आपका पास आपका कोई जिंदगी में कोई हदफ नहीं होगा, कोई एम नहीं होगा, कोई मकसद नहीं होगा, तो इंसान जब घर से पैर निकालता है बाहर और चलना शुरू होता है किसी तरफ, तो उसे जब ये नहीं पता कि मैंने कहाँ जाना है तो जाहिरी बात है वो घूमता फिरता रहेगा रोडों पे और उसे नहीं समझ आएगी कि वो कहाँ जा रहा है।
तो आज हम ये सोच के इस मकसद से घर से बाहर निकलते हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए कि हम रिस्क रोज़ी हलाल कमा सकें। नाज़रीन अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे और खुर्रम भाई को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफ़िज़।